अब आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा रचित केशव का प्रकृति चित्रण। मनुष्य का जन्म और उसका विकास प्रकृति के मध्य, प्रकृति के ही संपर्क और सहचर में हुआ है। वह आदिकाल से मनुष्य के क्रियाकलापों की क्रीड़ा स्थली रही है। प्रकृति को ही सुरम्य क्रोड़ में मनुष्य नेत्र खोलता है और मृत्यु पर्यंत उसी की लीला भूमि पर अपने जीवन के नाना खेल खेला करता है। इस प्रकार मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति का अनंत वैभव मनुष्य के लिए आश्चर्य, कौतूहल, श्रद्धा, अनुराग आदि विभिन्न भावनाओं का विषय रहा है और साहित्य में भी इसी कारण प्रकृति का प्रमुख स्थान है। साहित्य में प्रकृति के भव्य और सुरम्य दृश्यों का नाना प्रकार से प्रयोग किया गया है। संस्कृत साहित्याचार्यों ने तो प्रकृति को केवल उद्दीपन विभाव के अंतर्गत जागृत भावों को उद्दीप्त करने वाले रूप में ही माना है और नियम निर्धारित कर दिए हैं कि इसी रूप में प्रकृति के कुछ विशिष्ट अंगों जैसे वन, उपवन, जलाशय, काल, ऋतु आदि का महाकाव्यों में वर्णन हो, किंतु प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप के अतिरिक्त आलंबन रूप में यथातथ्य चित्रण और अलंकरण रूप में प्रकृति का प्रचुर प्रयोग भी मिलता है। मनुष्य के कार्यकलापों तथा भावनाओं की पृष्ठभूमि रूप में भी प्रकृति का पर्याप्त चित्रण साहित्य में हुआ है। साथ ही प्रकृति के मानवीकरण को भी प्रवृत्ति कवियों की रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कवियों ने अपनी 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 अलग अलग मान्यताओं के आधार पर कभी तो प्रकृति में ईश्वर के अनिवार्य नियम को चरितार्थ होते पाया, कभी उससे जीवन तथ्यों का उपदेश ग्रहण किया, कहीं उसमें क्रूरता और असहिष्णुता पाई तो कभी उसे सहानुभूति और सहृदयता से परिपूर्ण पाया है। वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि प्रकृति प्रेमी कवियों ने प्रकृति की सुषमा में मग्न होकर प्रकृति के सुंदर आदि यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किए हैं, किंतु बाद के साहित्य में प्रकृति के शुद्ध स्वरूप के सहज और स्वाभाविक तथा संश्लिष्ट चित्र उपलब्ध नहीं होते हैं। कारण यही प्रतीत होता है कि भारतीय दर्शन में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी गई, उसकी सत्ता ब्रह्म के साथ ही है। प्रकृति को महापुरुषों की अनुचरी के रूप में माना गया है, अतः रसात्मकम वाक्यम काव्यम वाली काव्य परिभाषा में भी स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। हिंदी में आचार्य केशव की ही प्रकृति के विशद तथा स्वतंत्र चित्रण की ओर सर्वप्रथम आकर्षित हुए। आलंबन रूप में ऋतिकाल के सभी आचार्य कवियों देव, भिखारीदास आदि ने रस निरूपण करते हुए प्रकृति को श्रृंगार के उद्दीपन विभाव के रूप में ही मान्यता दी है, किंतु केशवदास ने समस्त परंपरा के विरुद्ध प्रकृति रूपों को आलंबन के अंतर्गत रखा है। कोकिल, कलित, वसंत, फुली, फल, दली, अली उपवन के द्वारा प्रकृति को भी आलंबन सूची में स्थान दिया है। प्रकृति वर्णन के संबंध में केशव की अपनी मान्यताएं थी और उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रकृति का चित्रण किया है, परंतु वे प्रकृति के परंपरा भुक्त उपादानों के चित्रण के ही पक्ष में हैं। प्रकृति वर्णन के प्रमुख उपादान यूं गिनाए गए हैं: देश, नगर, वन, बाग, गिरी, आश्रम, सरिता, ताल, रवि, शशि, सागर, भूमि के, भूषण, ऋतु, सब काल। रामचंद्रिका में उन्होंने यथास्थान इन सभी का वर्णन किया है। केशव अलंकारवादी कवि थे, अतः उनके वर्णनों में अलंकारों की संश्लिष्ट योजना को ही प्रधानता मिली है। अपनी कृतियों में केशवदास ने प्रकृति वर्णन की सभी शैलियों को अपनाया है। आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में किया है। केशव की रामचंद्रिका में प्रकृति वर्णन की दो शैलियां दृष्टिगत होती है, रामायण की शैली तथा महाकाव्य की। परंपरा के अनुसार केशव ने कृत्रिम पर्वत और नदी का वर्णन किया है, जिनका उल्लेख संस्कृत काव्यों में क्रीड़ा क्षेत्र के नाम से हुआ है। यह राजसी वातावरण का प्रभाव माना जा सकता है। उपर्युक्त प्रकृति विषयों का वर्णन आधुनिक हिंदी काव्य का सा संश्लिष्ट और बिंब ग्राहक नहीं है। केशव का आदर्श माघ, श्रीहर्ष, बाण आदि का आदर्श था और उन्हीं की तरह उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के तथ्य चित्रण की ओर ना होकर उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि के रूप में मिलती है। प्राकृतिक दृश्यों पर पदार्थों का वर्णन नाम परिगणनात्मक शैली में भी है। रामचंद्रिका के अधिकांश प्रकृति वर्णन इसी शैली में है। केशवदास के काव्य सिद्धांतों के अनुसार वनवाटिका तथा कहीं समुद्र आदि के वर्णन में कुल विशिष्ट बातें अनिवार्य है और इन वस्तुओं के वर्णनों में उन्हें गिनाकर काम चला लेते हैं। उदाहरण के लिए विश्वामित्र के आश्रम के निकटस्थ वन का वर्णन प्रस्तुत है। तरुतालिस तमाल ताल हिंताल मनोहर मंजुल बंजुल तिलक लकुच कुल नारिकेर बर एला ललित लवंग संग पुंगी फल सोहे सारो सुककुल कलित चित कोकिल अली मोह। शुभ राजहंस कलहंस कुल नाचत मत मयूरगन अति प्रफुल्लित फलित सदा रहे केशव दास विचित्र बन। यहाँ उल्लेखनीय रीति पर कवि ने देशकाल की सीमा का ध्यान रखते हुए वृक्षों और पदार्थों के नाम गिना दिए हैं। इस तथ्य से कवि को कोई प्रयोजन नहीं है कि दक्षिण में पाए जाने वाले एला लवंग और पुंगी फल अयोध्या और मिथिला के मध्य स्थित वन में कैसे हो सकते हैं। संभवतः विचित्र वन कहकर कवि ने इस विश्वामित्र के तप प्रभाव से प्रस्तुत माना हो, परंतु ऐसा वर्णन करते समय केवल कवि परंपरा का पालन मात्र कर रहा है। इसी के आधार पर रामचंद्रिका में उन्होंने राम की वाटिका का वर्णन किया है। इस वर्णन को पढ़कर वाटिका की पुष्प फल और सुगंध समृद्ध शोभा का संश्लिष्ट चित्र पाठक के सम्मुख नहीं आता। वाटिका वर्णन में जो जो बातें आनी चाहिए थी कवि ने निरपेक्ष भाव से उपस्थित कर दी हैं। फिर भी एक ही स्थल पर प्रकृति का इतना विस्तृत वर्णन केशव के पूर्व हिंदी साहित्य में किसी कवि ने नहीं किया है। सरोवर के वर्णन में भी कवि के अनुसार कमलों भ्रमरों पक्षियों तथा जलचरों का वर्णन होना चाहिए। केशवकृत अयोध्या के सरोवर के वर्णन में भी यह सभी प्रस्तुत है। सुरसर सोभे मुनिमन लोभे सरसिज फूले अली रस भूले जलचर डोले बहु खग बोले बरनी न जाही उर जाही। सरिता वर्णन में जलचर है जलज तट जड़ा मुंड मुनिवास स्नान आदि का वर्णन केशव के अनुसार आवश्यक है। सरयू वर्णन इन्हीं मान्यताओं के आधार पर है। यहाँ भी सरिता की शोभा के प्रति केशव का अनुराग परिलक्षित नहीं होता, नामोल्लेख मात्र है। पंचवटी पंपासर प्रवर्सन पर्वत आदि का वर्णन भी कवि ने आवश्यक वस्तुओं की सूची देकर कर दिया है और इससे उनकी प्राकृतिक सुषमा का कोई चित्र पाठक के मन में नहीं उभरता। वास्तव में परिगणन शैली में किए गए ये वर्णन प्रकृति वर्णनों में भी परंपरा पालन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रस्तुत को जोड़कर कवि अप्रस्तुत पर दृष्टि डालने लगता है। दंडक वन का वर्णन ऐसा ही है। शोभत दंडक की रुचि बनी भांतिन भातिन सुंदर घनी सेव बड़े नृप की जनु लसे श्रीफल भूरी भाव जहाँ बसे बेर भयानक सियति लगे अर्क समूह जहाँ जग मगे नैननी की बहु रूपनी ग्रसे श्रीहरि की जनु मूर्ति लसे। अलंकार योजना के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि ऐसे स्थलों का कवित्व चमत्कारी वर्णन की प्रवृत्ति से दब जाता है और काव्य मध्यम कोटि का रह जाता है। ऐसे वर्णनों में कवि की दृष्टि प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा की ओर कम ही आ पाती है, वह अलंकारिक चमत्कार की ओर उन्मुख हो जाता है। चंद्र वर्णन में चंद्रमा की नैसर्गिक सुषमा का किंचन मात्र भी आभास न देकर कवि उपमानों की माला गूंथने लग जाता है, पर चंद्रमा के वर्ण से साम्य रखने वाले उपमानों को उतनी प्रगल्भता के साथ उपस्थित किया है कि काव्यानंद तो मिलता ही है। फूलन की शुभ गेंद नई सूंघी सची जनु डारी दई दर्पण सो शशि श्री रति को आसन काम महीपति को फेन किंधौ नव सिंधु लसै देव नदी जल हंस बसै शंख किंधौ हरिकेकर सो है अंबर सागर ते निकसौ है। इन्हीं कतिपय वर्णनों को देखकर कुछ आलोचक शुक्ल जी के इस कथन से सहमत हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। परंतु परिस्थिति ऐसी नहीं है। यदि हम छिद्रन्वेषण करने ही बैठे तो हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ कवियों में भी अनेक दोष निकाले जा सकते हैं। केशव में प्रकृति के प्रति सहृदयता थी, यत्र तत्र चमत्कार के कारण वर्णन दब अवश्य गए हैं जहाँ कवि ने बिंब ग्रहण कराने की सफल चेष्टा की है। ऐसे स्थल इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केशव में प्रकृति का शाब्दिक चित्र खींचने की पर्याप्त क्षमता थी। इस प्रतिभा का परिचय रामचंद्रिका में अनेक स्थलों पर मिलता है। राम जिस समय जनकपुरी में प्रवेश करते हैं वैसे ही सूर्य का उदय होता है और वहां अलंकृत शैली में कवि ने सूर्य की प्रातःकालीन अरुणिमा की शोभा का चित्रण किया है। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ मय मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेम मय परिपूरन सिंदूर पूर कैंधव मंगल घट किंधव शक्र कौछत्र मढ़्यव मानिक मयुख पट कैश्रोनित कलित कपाल यह किल कार्यपालक काल को यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को। कमल और चकवा का अरुण अनुराग, सिंदूरी वर्ण का मंगल कलश, मणिकांति सुशोभित इंद्र का छत्र, सभी उपमान तेज संचय करते हुए प्रातःकालीन सूर्य की भलीभांति अभिव्यंजना करते हैं। संभवतः उसे सूर्य की प्रचंडता दर्शित कराने का स्मरण हो आता है, फलतः वैसा उपमान उपस्थित कर देता है जो इस दृश्य की मनोरमता में बाधक बन जाता है। सूर्य उसे वैसा ही लाल प्रतीत होता है जैसे कापालिक के हाथ में रक्त रंजित कपाल, परंतु शीघ्र ही वह एक मनोरम कल्पना कर उस व्याघ्यात को हटाकर संपूर्ण दृश्य की मनोहारिता को व्यंजित कर देता है। सूर्यमानो दिग्वधु के भाल की सौभाग्य सूचिका लालमणि है। कहना ना होगा कि प्रत्येक पंक्ति में नवीन अवरस्तुत की योजना होते हुए भी वहां अप्रस्तुत अर्थात उदीयमान सूर्य का चित्र प्रधान है। इससे भी अधिक अलंकृत शैली में कवि ने प्रभात वर्णन किया है, पर यह वर्णन अत्यंत संश्लिष्ट और बिंबग्राही है। प्रातःकाल देखते देखते कैसे सब तारे छिप जाते हैं और सूर्य कहाँ से पहुंच जाता है, इस दृश्य का वर्णन कवि ने एक सुंदर रूपक के सहारे कर दिया है। चढ़ो गगन तरुधाई दिनकर बानर अरुण मुख कीन्हो झुकी लहझहराई सकल तारका कुसुम बिन। कवि की यह सूझ प्रशंसनीय है। प्रकृति के गण्यात्मक रूप की अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति यहाँ कवि ने की है। प्रकृति में ऐसे ही कल्पनात्मक सौंदर्य के दर्शन कवि ने अन्यत्र भी किए हैं। भ्रमरों सहित सुगंधित कमलों वाली गोदावरी मानो बहुनयन इंद्र की शोभा धारण किए हुए हैं। अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी चल तरंग तुंगा वाली चारु सहारिणी अली कमल सौगंध लीला मनोहारिणी बहु नयन देवेश शोभा मनोधारिणी। पहले दिए गए वन वर्णन में जहां नामोल्लेख मात्र है वहां वीर सिंह देवचरित में यही वर्णन बिंब ग्रहण लिए हुए हैं। यहां केवल सूचना मात्र नहीं है, वन के दृश्य का विस्तृत और यथार्थ चित्रण करने की वृत्ति अधिक परिलक्षित होती है। देश काल की उपेक्षा यहाँ भी है, पर उसके लिए केशव को दोषी ठहराकर कवि संप्रदाय की परंपरा को दोषी मानना होगा। कवि प्रकृति का भलीभांति निरीक्षण करना जानता था और जहाँ जहाँ वह हृदय को साथ लेकर चला है वहाँ उसने प्रकृति के अत्यंत सुंदर एवं मनोहर दृश्य प्रस्तुत किए हैं। वर्षा का अत्यंत मनोरम चित्र कवि ने खींचा है, किंतु कवि का अलंकार वैभव संपन्न हृदय उसे प्रकृति को उसके सहज स्वाभाविक रूप में अधिक काल तक नहीं देखने देता और श्लेष आदि का आग्रह उसे ऋतु की रम्यता भुलाकर उसका भयप्रद रूप वर्णन करने में लगा देता है। वर्षा कभी उसे कालिका के रूप में दिखाई देती है तो कभी वियोगिनी रूप में। अन्य ऋतुएं भी अपने प्रकृत रूप में न आकर बहुरूप बनाकर उगती है। वसंत शिव समान और ग्रीष्म सबर समूह बन जाती है। शरद शारदा जैसी है तो हेमंत विमुख प्रिया की प्रिया है और शिविर पर नारी। और ऐसे अस्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करते समय कवि प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित नहीं कर पाया है, किंतु जहां वह ऐसा कर सका है वहां प्रकृति के सहज स्वरूप की अत्यंत मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। रसिक प्रिया में कवि ने घने बादलों द्वारा फैलाए गए अंधकार की अत्यंत सुंदर और मार्मिक व्यंजना की है। राती है आई चले घर को दसहू दिशी मेह महामढ़ी आयो दूसरो बोल ही ते समुझे केशव यो छिति में तम छायो। कहीं कहीं वातावरण का वर्णन अतिशयोक्ति पूर्ण होने पर भी सुंदर है, यथा केशो दास मृगज बछैरु चोसे बाघ नीन चायत सुर भी बाघ बालक बदन है सिंघन की सटा एचय कलव करनी करी सिंघन को आसन गयंद को रदन है। इस प्रकार प्रकृति के शुद्ध स्वरूपों का चित्रण कवि ने विस्तार के साथ किया है। अधिकतर नाम परिगणनात्मक शैली में है। सजीव फड़कते हुए अलंकृत एवं चमत्कार पूर्ण वर्णनों की प्रचुरता है। अधिकांश स्थलों का प्रकृति काव्य आचार्यत्व के भाव से अभिभूत हो जाता है, जिसमें संस्कृत के परवर्ती चमत्कार प्रवण साहित्य का बहुत कुछ दायित्व है। आधुनिक ढंग के स्वतंत्र संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण केशव में नहीं मिलते, पर ऐसे वर्णन भी कम नहीं है जहां कवि ने बिंब ग्रहण कराने की सफल चेष्टा की है, और जो इस बात का परिचायक है कि केशव में भी प्रकृति के यथातथ्य निरीक्षण और सूक्ष्म चित्रण की क्षमता थी।